आपने फिल्म अमर अकबर एंथोनी का मशहूर गाना माय नेम इज़ एंथोनी गोंसाल्विस खूब सुना होगा। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में था। लेकिन आप क्या जानते हैं, एंथोनी गोंसाल्विस वाकई में एक शख्सियत थे। जी हाँ, वो एक मशहूर म्यूज़िक अरेंजर थे और उन्हीं के ऊपर ये नाम एंथोनी गोंसाल्विस इस गाने में डाला गया। एंथोनी गोंसाल्विस एक कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो प्यारेलाल यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो संगीतकार जोड़ी है उसमें श्री प्यारेलाल जी के वो गुरु भी थे। लेकिन शायद अब आजकल के लोग एंथोनी गोंसाल्विस के बारे में कम जानते होंगे। वैसे ये भी है कि कोई इतनी गहराई तक क्यों सोचे। आमतौर पर क्या होता है, लोग संगीत और गाने सुनते हैं, पर्दे पर जो हीरो हीरोइन दिखे, संगीतकार गीतकार और गायक, बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं। एक गाने को तैयार करने में बहुत लोग लगते हैं, बहुत से लोगों की मेहनत होती है, लेकिन ये चेहरे कभी सामने नहीं आते। गोंसाल्विस शायद उन्हीं में से एक थे। वो प्यारे लाल को वायलिन सिखाते थे, म्यूज़िक अरेंजर थे, लेकिन शायद उतनी शोहरत नहीं मिली, लोगों में कोई ख़ास पहचान नहीं बन पाई। ऐसे बहुत से गुमनाम चेहरे हैं, लोग उन्हें नहीं जानते नहीं पहचानते, लेकिन संगीत में, फिल्मों के गाने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। ये म्यूज़िक अरेंजर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, तमाम तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, कोरस में सिंगर होते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं आ पाता है। मुंबई में रहने वाले कुशल गोपाल का वैसे तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन संगीत से लगाव बचपन से ही रहा है। धीरे धीरे जब वो संगीत की दुनिया में आए तो ऐसे बहुत से गुमनाम चेहरों से रूबरू हुए। सबसे बड़ी बात, इन्होंने संगीत की दुनिया में इस तरह के गुमनाम चेहरों को एक पहचान देने की पहल की है। इनकी रिसर्च इसी पर है। कुशल बताते हैं।
नमस्कार, मैं मुंबई में स्थित हूँ। मेरी पैदाइशी भी मुंबई की है और बेसिकली हम एक बिजनेस फैमिली से हैं, पर संगीत के प्रति, संगीत की तरफ मेरा झुकाव कैसे कब हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। बचपन से ही संगीत का लुभावना लगता था, तो मैं संगीत सुनता गया और सोचता गया कि ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है और मुझे क्यों इतना लुभाता है वो, और यही मेरा सफर रहा है। जैसे कि आपने कहा, मेरे लिए भी यही सब मायने रखते थे कि ये आवाज किसकी है और ये किसने इसको रचा है, यानी कि किसने इसकी धुन बनाई है और किसने इसके शब्द लिखे हैं। पर सुनते सुनते मेरी मुलाकात तरह तरह के म्यूजिशियन से होने लगी, तरह तरह के म्यूजिक मेकर्स से होने लगी। मैं कुछ डायरेक्टर्स के करीब रहा और उसके बाद में ऐसे लोगों से मुलाकात होने लगी जो मुझे पता चला कि बहुत अहमियत रखते हैं, पर पर्दे के पीछे ही हमेशा रहे हैं और पर्दे के पीछे ही रहना चाहते थे। आपको सुन के ये आश्चर्य भी लगेगा। तो मैं ऐसे ऐसे म्यूजिशियन से मिलने लगा कि जो इनका इतना योगदान है, एक गाना बनता है, बहुत लोगों का पसीना जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे कि अगर मैं नाम लूँ, अगर एक फिल्मी गाना बन रहा है, तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज पद्धति बदल गई है, तो पहले के जमाने में गाना बनता था तो एक म्यूजिक डायरेक्टर होते थे जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है संगीत का, तो वो संगीत में उनके साथ में एक असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर रहते थे। ये कौन थे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, ये नाम हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा म्यूजिक को सजाना, यानी कि गाना बन गया है, गाया जाएगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसका ओपनिंग म्यूजिक क्या रहेगा और मुखड़े और अंतरे के बीच में म्यूजिक क्या रहेगा, उसको हारमोनियस किस तरह से आएंगी उसके पीछे, जिसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक भी, जो गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक कह सकते हैं, और गाना किस तरह से खत्म होगा, इसके बारे में काम सौंपा जाता था म्यूजिक अरेंजर्स या ऑर्केस्ट्रेटर्स को। ऐसे बहुत नाम रहे हैं, जैसे कि एंथोनी गोंसाल्विस साहब है, उनके पीछे तो गाना भी बना था, उनके शिष्य लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनके लिए, वो कैरेक्टर का नाम जो था वो फर्नांडिस था, तो जब ये गाना बन रहा था, एंथोनी साहब तो ऑलरेडी यूएस में चले गए थे तब तक, तो इन्होंने सोचा कि भाई ये ट्रिब्यूट हमको देना चाहिए, तो वो नाम उन्होंने माय नेम इज़ एंथोनी गोंसाल्विस किया और कैरेक्टर का भी नाम मनमोहन जी ने फिर बदल दिया, गोंसाल्विस कर लिया उसको। तो इस तरह से अरेंजर्स रहते थे और ढेर सारे म्यूजिशियंस रहते थे जो कंट्रीब्यूट करते थे एक गाने के बनने के लिए, एंड ऑफ कोर्स रिकॉर्डिस्ट रहते थे, जो बहुत बड़ा काम उनका था कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करते हुए और स्पेस माइक्रोफोन्स की पूरी यूटिलिटी कैसे निकालनी है, म्यूजिशियंस का पूरा काम कैसे बेहतरीन तरीके से सामने आए, तो वो उनका बहुत आर्टफुल काम रहता था, कंट्रीब्यूशन रहता था, बहुत योगदान रहता था। भी ये कॉरल सिंगर्स जहाँ जहाँ पे जिन गीतों में अनेक आवाजें हैं तो वहाँ पे कॉरस सिंगर्स को बुलाया जाता था और वो कॉरस सिंगर्स फिर आकर के जहाँ जहाँ उनको जैसा रिहर्स कराया गया है वो अपनी आवाजें देते थे, लीड सिंगर के पीछे हो, लीड सिंगर के साथ हो, कभी हमिंग हो, कभी कुछ सिर्फ दो तीन शब्दों की कुछ आधी लाइन हो। तो स्ट्रेटेजिकली वो जो कल्पना की गई है म्यूजिक डायरेक्टर ने, वो आकर के वो उसको अदा करते थे।
एंथोनी गोंसाल्विस का किस्सा आप जान गए। ऐसे ही एक फैमिली थी जिसको लॉर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं और ये फिल्मी दुनिया में थी। ये एक पारसी फैमिली थी, कवास और उनके दो पुत्र केरसी और बुजी। कवास ने पहली बोलती फिल्म आलम आरा में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। ये समझ लीजिए एक दौर ये था कि जब हर तीसरे गाने में इनके पुत्रों का म्यूजिक रहता था। ये थी लॉर्ड फैमिली। लॉर्ड फैमिली शायद अकेली पारसी फैमिली थी जो फिल्मी दुनिया में संगीत में थी। आर डी बर्मन के संगीत में लॉर्ड फैमिली का बैकग्राउंड संगीत बहुत ज़रूरी था। इन्होंने संगीत के बीच में आवाज़ निकाल कर एक अलग पहचान थी। नए इंस्ट्रूमेंट बजाने में ये पारंगत थे। आज की पीढ़ी को लॉर्ड फैमिली के बारे में शायद ही मालूम हो। दौलत और शोहरत एक समय तक इन लोगों के पास रही। शोहरत तो खैर क्या मिल पाई, क्योंकि ये लोग गुमनाम ही थे। इनमें से बहुत लोग तो ऐसे हुए जो अपना काम किए और जब काम मिलना बंद हो गया तो उनके हालात बुरे हो गए। कुशल इस विषय पर बताते हैं।
जी, तो मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि हिंदी सिनेमा संगीत की बात होती है तो हम मंगेशकर फैमिली की बात किए बिना रह नहीं पाते हैं। उसी तरह से ये म्यूजिशियंस की बात होती है तो एक लॉर्ड फैमिली रही है, तो कार्लोस लॉर्ड और उनके दो पुत्र केसी और बर्जोर, ये भी मंगेशकर फैमिली जैसे बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस हैं, इसी तरह लॉर्ड फैमिली भी रही है। और ये लोग तरह तरह के वाद्य बजाते थे, जैसे बोंगो है, ड्रम्स है, वाइब्रोफोन है, ग्लॉकेनस्पील है, कुछ कुछ नाम ये सब नए भी होंगे आपके लिए, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट वाद्य रहे हैं। जैसे कि ग्लॉकेनस्पील एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, सिम्फनी में यूज होता है, पर आप लोरियां अक्सर सुनेंगे तो जैसे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो तो लोरी नहीं है, या दूसरी लोरी है, मेरे घर आई एक नन्ही परी या नन्ही कली सोने चली, इस तरह में एक हल्का सा टिंग 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 सॉफ्ट इफेक्ट देने वाला इंस्ट्रूमेंट है ग्लॉकेनस्पील। तो ये लॉर्ड फैमिली बहुत स्पेशलाइज करती थी इसमें बजाने के लिए। केसी जी बजाते थे, बर्जोर जी बजाते थे, बर्जोर जी ड्रम्स के भी स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो आप रंगीला रे में उनका काम सुन सकते हैं। आर डी बर्मन साहब के बहुत सारे गानों में उनका योगदान है, एल डी बर्मन साहब के गानों में। कई डिविजन की बहुत दुखद हालत देखी है कि भाई जब तक काम रहा तब तक बहुत अच्छा चला, और अगर सेविंग हमने उन्होंने इन्वेस्ट नहीं की वाइजली, या खर्चे अपने बहुत बढ़ा के रखे थे, तो लास्ट स्टेजेस में बहुत ही बदतर हालत होने पे उनके साथ बहुत बुरा। तो ये इंडस्ट्री में कोई वैसा कोई फंड नहीं रहा, बाद में ये लोग ने डेफिनेटली कुछ योजनाएं भी बनाई, पर शुरू शुरू में तो बहुत हालत म्यूजिशियंस की खराब रही। और एक बात आपको मैं बताऊंगा जो आप आपके सवाल से जुड़ी हुई है, जो गुमनामी की बात कर रहे हैं, तो मैं इन कई म्यूजिशियन से, आर्टिस्ट से पूछता था कि भाई आप लोगों का नाम नहीं हुआ, आप लोग मतलब कभी आपकी चाह नहीं हुई कि हमारा भी नाम हो, तो ये कहते थे कि नहीं, हमने हमने म्यूजिक डायरेक्टर का नाम हुआ है जिसके साथ जिसके अंडर हमने काम किया है, तो हमारा काम यही था कि बेहतरीन से बेहतरीन काम करना है हमें, और जैसे उसको चाहिए वैसे उसको डिलीवर करना है, अपनी अपना रेम्यूनरेशन लेकर के और घर जाना है। हमने कभी कामना नहीं की कि हमारा नाम स्क्रीन पे आए या को जाना जाए। पर आपको एक बात बता दूं, आपको जान के शायद हैरानी भी होगी कि हमारे कुछ म्यूजिशियंस जो कि जिनका विश्व भर में नाम है, वो सिनेमा संगीत से बहुत बहुत करीबी तरीके से जुड़े हुए रहे हैं। और मैं नाम लूंगा आपको, जैसे कि हमारे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जो एआर कुरैशी के नाम से म्यूजिक देते थे। और म्यूजिशियंस का मैं अगर नाम लूं तो पंडित राम नारायण जी सारंगी वादक, जिनकी सारंगी ने कमाल कर दिया, 3-4 डेकेड्स जो उन्होंने बजाया है सिनेमा म्यूजिक में। पन्ना लाल घोष जी, हमारे उस्ताद रईस खान साहब, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये ऐसे नाम हैं जो आप और मैं जानते हैं और विश्व भर में इनकी ख्याति है। पर ये लोगों ने बहुत सुंदर काम सिनेमा इंडस्ट्री में किया और बहुत इम्पोर्टेंट म्यूजिशियंस रहे।
कवित्री अनिता सिंह ने लिखा है, भीड़ में अक्सर कुछ तो खोजते हैं ये गुमनाम से चेहरे, कुछ तो बोलते हैं, हर चेहरे की अलग एक कहानी है, बोलो तुम किसका किस्सा सबसे पहले सुनोगे। लखनऊ से फैसल फरीद।